नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष विमानन क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली विश्व वायु परिवहन संघ के वैश्विक के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और पैराग्वे स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करेंगे। केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी की। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित, राहत और बचाव अभियान जारी। रूस यूक्रेन शांति वार्ता का दूसरा दौर इस्तांबुल में संपन्न। दोनों पक्ष कैदियों की अदला बदली के संभावित अवसरों की तलाश करेंगे। स्वतंत्र उम्मीदवार करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष विमानन क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आज अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मानन व्यवस्था में विशाल बाजार के साथ नीति नेतृत्व, नवाचार और समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया।
आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी हैं।
श्री मोदी ने कहा कि इन विशिष्टताओं के साथ भारत अपने विमानन क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।
ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं, उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे।
इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार देश में अगले 5 वर्ष में 50 और हवाई अड्डे विकसित करेगी। भारत और पैराग्वे ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पैलेसियोस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की भी अपार संभावनाएं हैं।
हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर है। एक्सलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन की सराहना की। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों में साझा हितों के मामलों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए पैराग्वे की सराहना की।
Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations on behalf of the Paraguayan people.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पैलेसियोस से भेंट की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि श्री पैलेसियोस ने वंदे भारत रेलगाड़ियों के आयात में गहरी रुचि दिखाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना के दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री श्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि भारत कम आयात कर की पेशकश कर रहा है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए कम से कम $35,000 की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% का आयात कर लागू है। श्री कुमारस्वामी ने कहा कि ये लाभ तभी उपलब्ध होंगे जब कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश और विनिर्माण करने पर सहमत होती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित आवेदकों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए के निवेश करने की आवश्यकता होगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि खाद्यान्न भंडारण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि का सपना साकार करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र देश के खाद्य सुरक्षा के साथ साथ किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। श्री चौहान आज बिहार के मोतिहारी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लाभान्वित किसानों तक विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को पहुंचाना है।
ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान। बिहार में कई काम हो रहे हैं और इसलिए पूरे देश में बिहार सहित हमारे वैज्ञानिक निकले और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या, रिसर्च क्या होना चाहिए, ऐसे सुझाव पर भी हम लोग काम करेंगे।
भारत के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत की सिद्धांतवादी और दृढ़ निश्चय नीति के अनुरूप विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा कर रहा है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज काहिरा मिस्र में मिस्री संसदीय सदन के सदस्यों के साथ चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने यूनाइटेड किंगडम में हॉर्नेसी ऑफ्रियन बर्नेट के सांसद कैथरीन वेस से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया।
आज लगभग 25-30 इंग्लैंड के विभिन्न थिंक टैंक के लोग आए थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के प्रोफेसर्स आए थे, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स आए थे, बहुत खुलकर बातचीत हुई और सबों ने भारत के आतंकवाद पर हुए कार्रवाई की सराहना की और ये भी बताया कि आतंकवाद एक बहुत ही चिंताजनक बात है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज दुनिया को इसके बारे में एक रूप से सोचने की जरूरत है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का स्मरण कर रहे हैं।
1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टितवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा मजबूत तरीके से सुरक्षित एक पहाड़ी चोटी पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा जिससे उनकी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। ग्रेनेड के छर्रे लगने से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्टेन गन से दुश्मन की मीडियम मशीन गन टीम को तबाह कर उस मोर्चे पर कब्जा किया। खून से लथपथ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने दुश्मन पर लगातार हमला जारी रखा। जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और एक खाई से दूसरी खाई में जाकर दुश्मन सैनिकों को संगीन से मार गिराया। लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे तभी उनके सिर में गोली लग गई लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का यह अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प वीरता की एक मिसाल बना और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, राहत और बचाव अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के उत्तरी राज्यों के प्रमुखों को बारिश से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। श्री नड्डा ने प्रभावित क्षेत्रों में सभी से आवश्यक सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करने का आग्रह किया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में जल स्तर बढ़ गया है। 17 जिलों में करीब 4,00,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए लखीमपुर जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत में आश्वासन दिया कि सरकार सभी आवश्यक सहायता अवश्य उपलब्ध कराएगी। श्री शर्मा ने अरुणाचल में स्थित बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बिगड़ती बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए लखीमपुर के लीलाबाड़ी में गंगा नदी पावर प्लांट के अधिकारियों के साथ बैठक की। गुवाहाटी में भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों ने कहा कि असम के अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राज्य भर के कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गुवाहाटी से अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
वहीं अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। केंद्र ने 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सिक्किम के मंगन जिले के लाचिन में चातेन में लगातार बारिश के कारण भारी भूस्खलन में सेना का सैन्य शिविर प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर आज तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुआ। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि बैठक का उद्देश्य युद्ध विराम के लिए स्थितियों का मूल्यांकन करना, रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों के बीच संभावित बैठक पर चर्चा करना तथा कैदियों की अदला बदली के संभावित अवसरों की तलाश करना है। पोलैंड में विपक्षी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे दौर के चुनाव में जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के अनुसार नवरोकी को लगभग 51% वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज 2025 की छठी बाजी में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल करने वाले शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश को बधाई दी है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में इस साल 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इसमें कोलंबो को तटस्थ अतिरिक्त स्थान के रूप में जोड़ा गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल कॉमर्स में डार्क पैटर्न से उपभोक्ता संरक्षण पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष विमानन क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। भारत और पैराग्वे स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। रूस यूक्रेन शांति वार्ता का दूसरा दौर इस्तांबुल में सम्पन्न। और ICC ने भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।